आप सुन रहे हैं महाभारत के पात्र सर ऑडियो पिटारा पर मेरे यानी अनामय वर्मा के साथ। महारानी सत्यवती की आज्ञा से कृष्ण द्वैपायन यानी वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारते हैं। माता की आज्ञा को कृष्ण द्वैपायन यानी वेद व्यास जी कैसे टाल सकते थे? महारानी सत्यवती को वंश परंपरा के रुक जाने की चिंता से मुक्त करने के लिए वेद व्यास जी नियोग विधि का पालन करते हैं। परिणाम स्वरूप रानी अंबिका और अंबालिका एवं इनकी दासी गर्भ धारण करती हैं। माता सत्यवती की आज्ञा का पूर्ण पालन हो जाने के बाद वेद व्यास जी पुनः वन को चले जाते हैं। कालांतर में रानी अंबिका धृतराष्ट्र को जन्म देती हैं और रानी अंबालिका पांडु को और साथ ही दासी विदुर को जन्म देती हैं। इस तरह भीष्म पितामह के संरक्षण में महारानी सत्यवती ने अपने प्रथम पुत्र कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी की सहायता से नियोग द्वारा चंद्रवंशियों के कुल की रक्षा की। भीष्म पितामह ने दोनों नवकुमारों को बचपन से ही सदा अपनी छत्र छाया में रखा। उन्होंने धृतराष्ट्र, पांडु और साथ ही विदुर को भी शिक्षा दीक्षा देकर राजपाट के योग्य बनाने के लिए दिन रात बहुत परिश्रम किया। समय के साथ साथ तीनों बालक बड़े हुए। युवराज पांडु बड़े होकर धनुर्विद्या में सिद्धस्थ हुए और धृतराष्ट्र अत्यंत बलशाली हुए। युवराज धृतराष्ट्र 100 हाथियों के बल समान शक्ति के स्वामी बने। अब वो भी समय आ गया जब भीष्म पितामह के सामने फिर वही प्रश्न आ खड़ा हुआ कि हस्तिनापुर का सिंहासन अब किसे सौंपा जाए, क्योंकि धृतराष्ट्र बड़े होने के नाते निसंदेह राजगद्दी के अधिकारी थे, परंतु वे जन्मांध थे। उस परिस्थिति में वे राजकाज करने में कैसे समर्थ हो सकते थे? विदुर स्वभाव से शांत, धर्मज्ञानी और अत्यंत नीति कुशल हुए, परंतु वो दासी पुत्र थे। इसीलिए भीष्म पितामह द्वारा युवराज पांडु को ही हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। साथ ही धर्मात्मा विदुर को राज्य का महामंत्री बनाया गया। अब आप स्वयं ही कल्पना कीजिए कि ऐसी परिस्थिति में युवराज धृतराष्ट्र के मन में भीष्म पितामह के प्रति रोष और अपने अनुज राजा पांडु के प्रति ईर्ष्या की गांठ पड़ेगी या नहीं? भीष्म पितामह को इस जटिल समस्या को सुलझाने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, हम और आप समझ सकते हैं। इसीलिए जीवन में जब कभी ऐसे कठिन निर्णय लेने का समय आए तो हमें केवल अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। और फिर वो तो गंगा पुत्र भीष्म थे। उन्होंने सदा ही केवल हस्तिनापुर की भलाई की चिंता की और अपने पूर्वजों की मर्यादा को ध्यान में रखा। शेष सब कुछ उनके लिए नगण्य था। इसीलिए तो कहा गया है, देवव्रत भीष्म पितामह सा न कोई हुआ है और न कोई हो पाएगा। धृतराष्ट्र के मन में चल रहे अंतर्द्वंद का दुष्प्रभाव राज परिवार के सुख शांति पर न पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र का मन बदलने के उद्देश्य से उन्हें विवाह का प्रस्ताव सुना दिया। भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र के विवाह की घोषणा करते हुए कहा,
गांधार नरेश महाराज सुबल ने अपनी अति सुंदर कन्या गांधारी का विवाह युवराज धृतराष्ट्र के साथ करने का प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया है।
इस घोषणा के बाद स्वतः ही राज्य में चारों ओर उत्सव और उल्लास का परिवेश खड़ा हो गया। धृतराष्ट्र के मन पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस तरह सही समय पर भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से करवा दिया। उसके बाद भीष्म पितामह ने राजा पांडु का विवाह भी करवाया। राजा कुंती भोज की पुत्री कुंती के साथ महाराज पांडु का विवाह संपन्न हुआ। आगे चलकर महाराज पांडु ने मद्र देश की राजकुमारी माद्री से भी विवाह किया। महाराज पांडु ने लगभग 12 वर्ष तक हस्तिनापुर पर शासन किया, जिसके बाद एक श्राप का शिकार होकर वे सब कुछ त्याग कर हिमालय चले गए थे। महाराज पांडु के चले जाने के बाद स्वाभाविक है हस्तिनापुर के सिंहासन पर धृतराष्ट्र का अधिकार हो गया था। इस समय तक भीष्म पितामह लगभग 95 वर्ष के वृद्ध हो चुके थे। महाभारत काल में भीष्म पितामह ही सबसे लंबी आयु के महापुरुष हुए, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं ये प्रमाणित करती हैं कि भीष्म पितामह लगभग 170 वर्ष जिए हैं। इसे तथ्यात्मक रूप से समझने के लिए पिछली कुछ घटनाओं को याद करने की आवश्यकता है। साथ ही यहां यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि जब धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ तब तक भीष्म पितामह की आयु 65 वर्ष की हो चुकी थी। साथ ही यह भी याद रखना आवश्यक है कि जब युवराज पांडु का राज्याभिषेक हुआ उस समय उनकी आयु 18 वर्ष की थी। महाभारत की एक और गणना है जिससे हमें ज्ञात होता है कि गंगा पुत्र भीष्म ने जब आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की थी तब वे केवल 22 वर्ष के थे। उनके प्रयास से ही महाराज शांतनु एवं सत्यवती जी का विवाह संपन्न हो पाया था। फिर महाराज शांतनु की अकस्मात मृत्यु के बाद जब उन्होंने छोटे भाई चित्रांगद का राज्याभिषेक किया तब चित्रांगद 20 वर्ष के थे, यानी तब भीष्म की आयु 22+20 यानी 42 वर्ष की थी। राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद ही एक युद्ध में चित्रांगद मारे गए थे, तब भीष्म 50 वर्ष के हो चुके थे। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण राजा नहीं बन सकते थे तो उन्होंने विचित्र वीर को ही राजा बना दिया जो चित्रांगद से छोटे थे। जब विचित्र वीर का राज्याभिषेक हुआ तब वो मात्र 16 वर्ष के थे। राज्याभिषेक के 5 वर्ष बाद विचित्र वीर का विवाह काशी नरेश की 2 पुत्रियों अंबिका और अंबालिका के साथ संपन्न हुआ। तब भीष्म 50+5 55 वर्ष के हो गए थे। दुर्भाग्यवश विवाह के 8 वर्ष बाद ही विचित्र वीर की क्षय रोग यानी टीबी से मृत्यु हो गई थी। अब तक भीष्म की आयु 55+8 63 हो चुकी थी। चित्रांगद और विचित्र वीर दोनों ही पृथ्वी से निःसंतान चले गए थे। तब महारानी सत्यवती की आज्ञा हुई और पुत्र कृष्ण द्वैपायन यानी वेद व्यास जी के नियोग से रानी अंबिका और अंबालिका ने धृतराष्ट्र और पांडु को जन्म दिया। तब तक 2 वर्ष और बीत गए थे, यानी जब धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ तब भीष्म पितामह 63+2 65 वर्ष के हो गए थे।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरीज के लिए सुनते रहिए ऑडियो पिटारा।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।